दिन भर 13 अप्रैल गुरुवार, सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। भारत में उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी बाकी दलों पर भारी। दिल्ली में आप और पश्चिम बंगाल में वामपंथी दल तीसरे नंबर पर।
जो तकलीफ दिया है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को, उसका निर्णय सुना दिया है रजौरी गार्डन में, दिल्ली की वहाँ रजौरी गार्डन के वोटर्स ने।
उपचुनाव के नतीजों का क्या होगा देश की राजनीति पर असर, करेंगे विश्लेषण। भारत प्रशासित कश्मीर के श्रीनगर में शांति से मतदान, लेकिन महज 2% लोगों ने डाला वोट। भारत के महानगरों में पेट्रोलियम के दाम अब हर रोज तय होंगे, क्या कहते हैं लोग।
सरकार का फैसला तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे लागू करना इतना आसान भी नहीं होगा। चोर बाजारी होगी इसमें, इस तरह के रेट अप डाउन रोज के होंगे।
आपकी चिट्ठियों के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर जीत का परचम लहराया है। दिल्ली की राजौरी गार्डन, मध्य प्रदेश की बांधवगढ़, असम की धेमाजी और हिमाचल प्रदेश की भोरांज विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। कर्नाटक की 2 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं, जबकि झारखंड की लिट्टीपाड़ा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल में भी 1 सीट पर उपचुनाव हुआ था, जहां तृणमूल कांग्रेस ने दबदबा कायम रखा है। मध्य प्रदेश में विवादित भिंड की अटेर सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। यूरोपीय मानवाधिकार अदालत ने साल 2004 के बेसलान स्कूल बंधक कांड मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि इस घटना में मारे गए लोगों को बचाने के लिए रूसी सरकार को और कदम उठाने चाहिए थे। इस घटना में 300 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर बच्चे थे। चेचन अलगाववादियों ने इस स्कूल में 1000 से भी ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। बंधकों को छुड़ाने के लिए रूसी सुरक्षा बलों ने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिसकी काफी आलोचना की गई थी। यूरोपीय मानवाधिकार अदालत ने यह भी कहा कि रूस इस हमले की खुफिया जानकारी जुटाने में नाकाम रहा। रूस ने अदालत के इस दावे की भर्त्सना की है। हम इस तरह के नतीजे से सहमत नहीं हो सकते। रूस वो देश है जिसने 1 से अधिक चरमपंथी हमले झेले हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी देश जो हमलों का भुक्त भोगी रहा है, वो इस तरह की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूस की सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर कोरिया में राजधानी प्योंगयांग में एक नए रिहायशी और कारोबारी परिसर का उद्घाटन किया गया है। ये सब ऐसे समय हो रहा है जब मिसाइल परीक्षण और परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर अमेरिका के साथ उत्तर कोरिया का तनाव बढ़ता जा रहा है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सैनिकों और आम लोगों की मौजूदगी में रिबन काटकर इस नए परिसर का उद्घाटन किया। वहाँ मौजूद लोगों का कहना था कि अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव की उन्हें बहुत ज्यादा परवाह नहीं है। ये बड़ी साधारण सी बात है, हमारे पास सैन्य ताकत है, हमारे नेताओं ने मिलिट्री फर्स्ट की नीति बनाई है, हमारे नेता किम जोंग उन ने परमाणु ताकत भी विकसित कर ली है, इसलिए हम एकदम निश्चिंत हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। ये थे उत्तर कोरिया के एक आम नागरिक के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सोमालिया में हैजा और अतिसार की वजह से इस साल जनवरी से अब तक 500 से अधिक लोग दम तोड़ चुके हैं। 25,000 से अधिक लोग इसकी चपेट में आए हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ने की आशंका है। सोमालिया में बीते कई दशकों से इतना ज़बरदस्त सूखा पड़ा है, जिसकी वजह से लोग दूषित पानी भी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है कि आने वाले कम से कम 6 महीने में भी हालात सुधरने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि उनकी सेना ने रासायनिक हथियारों का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं किया। खान शेखून में इस महीने कथित रासायनिक हमले के बाद अपने पहले साक्षात्कार में राष्ट्रपति असद ने समाचार एजेंसी AFP से कहा कि इस तरह के दावे 100% झूठे हैं। कथित रासायनिक हमले के बाद ही अमरीका ने पिछले दिनों सीरिया में सेना के एक ठिकाने पर हवाई हमला किया था। राष्ट्रपति असद ने कहा कि कथित रासायनिक हमले के मामले में उनकी सरकार किसी भी जांच के लिए तैयार है, लेकिन ये जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी ने अपना फुटबॉल क्लब एसी मिलान चीन के निवेशकों के एक समूह को बेच दिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, भारत में आज उपचुनाव के नतीजों का दिन था। देश भर की कुल 10 विधानसभा सीटों के चुनाव में आज वोटों की गिनती हुई और बीजेपी को इसमें दूसरे दलों पर बढ़त मिलती दिख रही है। दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार की जीत इसमें काफी अहम है, क्योंकि पिछली बार यहां से जीतने वाली आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक की 2 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए रखी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली है। पूरा ब्यौरा सुनिए सलमान रावी से।
ये जश्न दिल्ली के राजौरी गार्डन के इलाके में हो रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनजिंदर सिंह सिरसा की जीत पर पूरे जोश में हैं। जोश की वजह भी है, क्योंकि मिनी पंजाब के नाम से जाने जाने वाले इस इलाके में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने भारी जीत दर्ज की है। इस सीट पर कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही, जबकि आम आदमी पार्टी तीसरे स्थान पर। राजौरी गार्डन सीट पर हुई हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना था,
वहां पर जनरल सिंह जी हमारे विधायक थे, उनके पंजाब जाने से जनता में नाराजगी थी। हमने काफ़ी कोशिश की थी बात करने की, लोगों को समझाने की, लेकिन नतीजों से समझ में आ रहा है कि लोग माने नहीं, लोगों में नाराजगी कम नहीं हुई। तो अब कोई बात नहीं, ये तो उपचुनाव था, आगे के चुनाव के लिए हम तैयारी करेंगे और राजौरी गार्डन के लोगों को समझाने की भी कोशिश करेंगे।
मनीष सिसोदिया की तरह ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के विधायक जर्नैल सिंह ने अपनी सीट से इस्तीफा देकर पंजाब से चुनाव लड़ना बेहतर समझा, इस वजह से आपके उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा।
जर्नैल सिंह दिल्ली छोड़ के पंजाब चले गए, इसके वजह से आम आदमी बुरी तरह दिल्ली में हारी है। सिरसा जी की जीत हुई है और बीजेपी की मोदी की जीत हुई है, अकाली दल की जीत हुई है।
मोदी, 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 मोदी,
मोदी, मोदी, मोदी। हमने जो गलती की उसको सुधार किया
है। एमसीडी बीजेपी और अकाली का गठबंधन का पहली बार जीत हुई है और हम बहुत ही जश्न मना रहे हैं, खुशी के साथ बहुत जश्न मना रहे हैं।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी का कहना था,
जो तकलीफ दिया है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को, उसका निर्णय सुना दिया है राजौरी गार्डन में, दिल्ली की वहाँ राजौरी गार्डन के वोटर्स ने। और कांग्रेस भी आम आदमी दोनों एक समान रूप से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, मैं दिल्ली को राजौरी गार्डन को धन्यवाद देता हूं।
भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बड़ा दिन था, क्योंकि 7 राज्यों की 9 विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर अपना जलवा बनाए रखा। वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक की 2 विधानसभा की सीटों पर जीत हासिल की। उसी तरह बंगाल की एकमात्र सीट पर हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बाजी मार ली, जबकि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिट्टीपाड़ा सीट पर बढ़त बनाए रखने में कामयाबी हासिल की। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
तो जैसा कि आपने सुना कि बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो अटेर सीट थी वहां उसे महज 858 वोटों से हार मिली है और कांग्रेस ने वहां जीत का परचम लहराया है। उपचुनाव के इन नतीजों का देश की राजनीति पर क्या असर होगा आने वाले दिनों में? थोड़ी देर पहले मैंने यही सवाल पूछा वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी से।
देखिए, ये एक तो इस बात को फिर से स्थापित कर रहे हैं कि बीजेपी अभी चढ़ान पर ही है, फिलहाल अभी कोई रुकावट उनके रास्ते में दिखाई नहीं पड़ती है। आमतौर पर जो उपचुनाव के नतीजे होते हैं वो ज्यादातर जिस की सरकार होती है जिस इलाके में वही प्रत्याशी जीतते हैं। हिमाचल में वैसा नहीं हुआ, लेकिन कर्नाटक में वही प्रत्याशी जीता जिसका सत्तारूढ़ दल जिनका वहां पर था। तो इन 2 नतीजों को अगर देखें तो इनके अलग अलग परिणाम दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जल्दी ही हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं और कर्नाटक आगे होंगे अगले साल। इससे देखा जा सकता है कि बीजेपी का क्या असर है या नहीं है। बाकी नतीजे आमतौर पर वैसे ही हैं जिसकी की उम्मीद। इसके अलावा जो दिल्ली का नतीजा है वो जरूर थोड़ा आश्चर्य में डालता है। बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है दिल्ली में सरकार को, 2.5 साल करीब हुए हैं, और ऐसी अलोकप्रियता आ गई है। सत्तारूढ़ दल का प्रत्याशी था, उसकी जमानत दी जब। 3 नतीजे पर थोड़ा अलग नजरिए से देखा जा सकता है, बाकी उपचुनावों के नतीजे कोई बहुत ज्यादा मतलब रखते नहीं।
पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है, जो टीएमसी ने सीट जीती है, वहाँ उसका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार से हुआ और लेफ्ट पार्टियां जो हैं वो तीसरे और चौथे नंबर पर चली गई।
ये जरूर ध्यान देने लायक बात है और खासतौर से पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि बीजेपी ने अपना वोट प्रतिशत पश्चिम बंगाल में भी बढ़ाया था। और अगर कोई पार्टी दूसरे नंबर पर आ जाती है इसका मतलब है मुकाबले में अब वो ज्यादा बड़ी पार्टी है। और खासतौर से वामपंथी पार्टियां अगर बंगाल में तीसरे नंबर पर चली जाती है तो ये उनके लिए एक और खराब संदेश है, क्योंकि बंगाल और केरल दो ही जगह पर और खासतौर से त्रिपुरा तीन ही जगह पर वामपंथी दलों का प्रभाव क्षेत्र रहा है। अगर वहां भी घट रहा है तो फिर ये उनके लिए खतरे का संकेत है।
तो बीजेपी के लिए परिणामों को कैसा मान रहे हैं आप?
देखिए असल में ये जो परिणाम है मैंने कहा भी कि इनका कोई राजनीतिक महत्व ज्यादा नहीं होता की वजह से कोई सरकारों का गिरना या उठना नहीं बन पाता है, लेकिन जो संदेश है वो क्योंकि अब हम ज्यादातर लोग अगले 2019 के चुनाव के बारे में विचार करने लगे तो ये जो परिणाम है ये एक तरफ बीजेपी को एम्बोल्डन करेंगे यानी थोड़ी सी उनको ताकत मिलेगी, थोड़ा सा उनको आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही जो विपक्ष है उसको ये सोचने का अवसर मिलेगा कि कैसी रणनीति बनाई जाए, क्योंकि अभी तक जैसे उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष बिखरा हुआ था यानी वो आपस में भी विपक्ष के वोट बटे थे। क्या संभव है कि विपक्ष एक साथ आ सके और क्या अगर आया तो क्या उसका कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि अक्सर कई बार ये भी होता है जैसे उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ आए लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ दोनों ही दलों।
ईवीएम को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं क्या इन नतीजों को भी मान रहे हैं आप कि इसे लेकर के वो सवाल और तीखे होंगे?
हाँ, जो राष्ट्रपति से अभी ये जो प्रतिनिधि मंडल मिलकर आया है उन्होंने ईवीएम का सवाल ये उनके सामने रखा है और सुप्रीम कोर्ट में भी एक आज की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है केंद्र सरकार को और चुनाव आयोग को ईवीएम को लेकर के, खास तौर से जो वीवीपैट है जो जिसमें पर्ची निकाल करके बताने की बात है उसको लागू करने की तो जरूरत। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने भी ये एक चुनौती दी है कि अभी वो शायद मई की कोई तारीख घोषित करेंगे कि उसमें कोई खामी निकाल करके दिखा सके तो दिखाए। तीसरी बात ये भी है कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है ईवीएम को लेकर के लेकिन उसके ही कुछ नेताओं ने जैसे वीरप्पा मोइली या पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह उनका कहना है कि अगर उसमें खराबी होती ईवीएम में तो हम जीत कर ही नहीं आ पाते। तो ईवीएम को लेकर के अंततः क्या होगा कहना मुश्किल है, पर फिलहाल तो अभी ऐसा लगता है कि हार जाने के बाद जो हारे हुए दल हैं वो कारण नहीं बता पा रहे हैं तो वो ईवीएम के ऊपर दोष दे रहे हैं।
वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी से ये बातचीत थोड़ी देर पहले मैंने की थी जिसमें उन्होंने चुनाव के उपचुनाव के नतीजों का विश्लेषण किया। देश के बाकी हिस्सों में जहां चुनाव के बाद वोटों की गिनती हो रही थी वहीं भारत प्रशासित कश्मीर में श्रीनगर के लोकसभा उपचुनाव के लिए 32 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोट डाले जा रहे थे। बीते हफ्ते चुनाव में भारी हिंसा के बाद यहां मतदान को रद्द कर दिया गया था। उस दिन वहां 6% लोगों ने मतदान किया था लेकिन आज ये आंकड़ा महज 2% पर ही रुक गया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि आज जो वोट डालने का काम था वो बहुत शांति के साथ निपटा। श्रीनगर से माजिद जहांगीर को सुनिए।
भारी सुरक्षा के बीच आज श्रीनगर के संसदीय चुनाव क्षेत्र के जिला बड़गाम के 38 पोलिंग स्टेशनों पर आज दोबारा मतदान कराया गया। यहाँ सुबह 7 बजे से ही बहुत ही सुस्त रफ्तारी के साथ मतदान केंद्रों पर मतदाता देखे गए। 20 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर कोई भी मतदाता मत का इस्तेमाल करने नहीं आया। यहाँ मतदाताओं की कुल तादाद 35,169 थी। बड़गाम में आज कराए गए दोबारा उपचुनाव की जानकारी देते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर शांत मानू का कहना था,
आज श्रीनगर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के 38 पोलिंग स्टेशन पर रिपोर्ट हुआ। ये रिपोर्ट इसलिए करना पड़ा था क्योंकि 9 अप्रैल को जो मेन इलेक्शन हुआ था तो उसमें इन पोलिंग स्टेशन पर बड़ी स्केल की गड़बड़ी लिखी गई थी, या तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चोरी हो गई थी या उनको डैमेज किया गया था। उसके हिसाब से आज यहाँ पर रिपोल हुआ। सुबह 7 बजे रिपोल शुरू हुआ और शाम 4 बजे ख़त्म हुआ। इसमें कुल 709 लोगों ने आज वोट का इस्तेमाल किया, करीब करीब 2% बनता है ये हमारा जो आज के वोटर्स थे उसके हिसाब से।
आज मतदान के दौरान बड़गाम के किसी भी इलाके में किसी बड़ी घटना की अभी तक कोई खबर नहीं है, ताहम 2-3 जगहों पर हल्की पत्थरबाजी और सुरक्षा बलों और युवाओं के बीच झड़पें हुई हैं। 9 अप्रैल को हुए चुनाव में कुल 7.12% पोलिंग रिकॉर्ड किया गया था। जम्मू कश्मीर के 2 संसदीय क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं। मतदान केंद्रों को छोड़कर जिला बड़गाम के दूसरे इलाकों में धारा 144 लगा दिया गया था और आम लोगों के चलने फिरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अलहदी की पसंद ने जिला बड़गाम के अन्य इलाकों में बंद बुलाया था जहां आज दोबारा उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी थी। बड़गाम में 9 अप्रैल को हिंसा के बाद दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग क्षेत्र में वोटिंग को 25 अप्रैल तक टाल दिया गया है। वहां 12 अप्रैल को मतदान होना था। श्रीनगर चुनावी मैदान में कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें अहम मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी के नजीर अहमद खान के दरमियान है। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
बीबीसी इंडिया बोल।
कश्मीर में वोटर नाराज क्यों? पिछले विधानसभा चुनाव में 60% मतदान हुआ, पर अब श्रीनगर उपचुनाव में 100 में से 7 लोगों ने वोट दिया। कश्मीर में माहौल सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 15 अप्रैल शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
तो आप भी फोन करना मत भूलिएगा। और अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। बजट सत्र के समापन के साथ बुधवार शाम को भारतीय संसद की कार्यवाही स्थगित हुई। इस बार के बजट सत्र को सुनहरा बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें जीएसटी, मातृत्व अवकाश, शत्रु संपत्ति जैसे कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। कैसा रहा पूरा सत्र, सुनिए नितिन श्रीवास्तव से।
केंद्र में आसीन भाजपा सरकार संसद सत्र खत्म होने के बाद अब सुकून में दिख रही है। वजह साधारण है, लेकिन उनके लिए बड़ी है। बुधवार खत्म हुआ बजट सत्र नरेंद्र मोदी सरकार के लिए संसद में अब तक के सबसे सफल सत्रों में शुमार हो गया है। इससे पहले के लगभग सभी सत्र हंगामे वाले रहे थे, लगातार बाधित होते रहे और गतिरोध भी बरकरार रहा था। 2014 से केंद्र में आसीन मोदी सरकार को इस बात की राहत मिली होगी कि इस बजट सत्र में लोकसभा में 23 और राज्यसभा में 13 बिल पारित हुए। संसद के कामकाज की समीक्षा करने वाली संस्था पीआरएस के मुताबिक वर्ष 2004 के बाद के बजट सत्रों में इस सत्र में बजटीय खर्च पर भी सबसे ज्यादा चर्चा हुई। हालांकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बिल अभी भी राज्यसभा में ही अटका हुआ है, लेकिन जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित 4 विधेयक दोनों सदनों में पास हुए, जिसके चलते सरकार ने चैन की सांस ली। जीएसटी को लागू करने की तमाम पिछली कोशिशें सरकार और विपक्ष के बीच जारी रहे गतिरोध में फंसी रही थीं। इस बजट सत्र में जो चीज ऐतिहासिक बताई जा रही है, वो थी आम बजट और रेल बजट का पहली बार एक साथ प्रस्तुत किया जाना। लेकिन इसके बावजूद कि इस बजट सत्र को पिछले कई वर्षों के सफलतम सत्रों में गिना जा रहा है, दोनों सदनों में कुल 21 घंटे की कार्यवाही हंगामे की वजह से बाधित भी रही। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस से कुछ नेताओं ने इस बात का जिक्र भी जरूर किया कि ज्यादातर पास हुए बिल पिछली सरकार की ही देन कहे जा सकते हैं। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी दिल्ली।
भारत सरकार ने फैसला किया है कि अब जो महानगर हैं भारत के, उनमें पेट्रोल और डीजल के दाम बड़े शहरों में हर दिन तय किए जाएंगे। इसका एक ये फायदा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम की कीमतों के अनुसार ही हर दिन कीमत तय होगी। दुनिया के विकसित देशों में पेट्रोलियम की कीमत इसी तरह से तय होती है। हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने इस बारे में लोगों की राय जानने की कोशिश की है, आइए सुने।
कोई भी अगर प्रोजेक्ट होगा जो कस्टमर्स को बेनिफिशियल होगा तो हम उसे एक पॉजिटिव वे में लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी समझना चाहिए कि हम यहाँ पे कोई चैरिटी तो कर नहीं रहे, बिजनेस चला रहे हैं, हमारे पास भी स्टॉक्स होते हैं। अगर ये हर रोज बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमें फायदा होता है, लेकिन कम भी करेंगे ये तो नुकसान भी होगा उससे हमें। और यही अगर ये 16th और एंड ऑफ द मंथ में होता था, हर फोर्टनाइटली जिसको बोलते हैं प्राइस चेंज होता था, उससे हमें एक प्लानिंग हो सकती थी, उससे हम स्टॉक अपना बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। और प्लस डायनामिक प्राइसिंग सी देखिए, ट्रांसपोर्टर्स को बेनिफिशियल होता है जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उससे बाकी मार्केट डायनामिक्स में फर्क पड़ता है। देखिए ऑटोमेशन जिसे कहते हैं, जिससे रेट अपने आप चेंज हो जाते हैं, कंपनी अपने आप रेट चेंज करती है, वो सब पेट्रोल पंप्स पे नहीं है। अभी तकरीबन 58,000 पेट्रोल पंप्स हैं, 3 बड़ी भारत की जो OMCs जैसे बोलते हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनके सारे पंप्स ऑटोमेटेड नहीं है। और जो 5 शहरों में जहां पे हो रहे हैं, क्या वहां पे सारे पंप्स ऑटोमेटेड हैं? नहीं है ना, सारे पंप्स ऑटोमेटेड नहीं है, तो क्या हर रोज डीलर रेट चेंज करेगा? देखिए अब इंटरनेशनल प्राइस तो चढ़ रहा था और कम हो रहा था, जनवरी से लेकर अभी तक इन्होंने रेट कोई चेंज नहीं करा। हर 15 दिन में रेट जब चेंज होना होता है, ये डिसाइड किया था इन्होंने, ऑयल मिनिस्ट्री ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो फिर अभी रेट क्यों नहीं चेंज करा? वी आर अ डेवलपिंग नेशन, हम अभी बढ़ रहे हैं, अभी डेवलप थोड़ी हैं हम। हमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अगर एनर्जी पे अगर गवर्नमेंट एक्साइज टैक्स करना भी चाहती है, एक्साइज बढ़ाना भी चाहती है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर हमारे देश की तरक्की होती है और प्राइस बढ़ा के एक्साइज बढ़ा के हमें बेनिफिट मिलता है उसका कस्टमर को या एज अ सिटीजन, तो कोई गलत नहीं है उसमें।
मेरा नाम ब्रजराज सिंह है, मैं रोहिणी सेक्टर 24 रहता हूं। सरकार का फैसला तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे लागू करना इतना आसान भी नहीं होगा। आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी सरकार को।
क्या दिक्कतें आएंगी?
दिक्कतें हैं, एक तो चोर बाजारी होगी इसमें, जिस तरह के रेट अप डाउन रोज के होंगे। पेट्रोल डीलर बोलेंगे हमारे पास तेल नहीं है, और रेट बढ़ जाएगा तो ब्लैकिंग होगी इसमें, कई तरह की और समस्याएं आएंगी।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से देखो तो क्रू कच्चे तेल का ऑयल का रेट बहुत ज्यादा गिर रहा है, आए दिन रेट कम होता जाता है, लेकिन सरकार जनता को बेनिफिट नहीं दे पा रही।
तो ये थी लोगों की राय पेट्रोल और डीजल का दाम रोज तय करने के बारे में। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर, अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला जज शीला अब्दुस्सलाम का शव हडसन नदी में पाया गया है। 65 साल की शीला अब्दुस्सलाम न्यूयॉर्क की सर्वोच्च अदालत की पहली काली महिला जज थी और प्रिंसटन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री में जस्टिस अब्दुस्सलाम का नाम अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला जज के तौर पर दर्ज है। न्यूयॉर्क पुलिस ने कहा है कि एक इमरजेंसी कॉल के बाद उन्हें पानी से निकाला गया और फिर उन्हें मृत घोषित किया गया। पुलिस के मुताबिक जज अब्दुस्सलाम के पति ने उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। जज अब्दुस्सलाम के परिवार ने उनके शव की पहचान कर ली है और मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगी। पुलिस का कहना है कि जज के शव पर किसी चोट के निशान नहीं हैं और वो साधारण कपड़े पहने हुए थी। जज शैला अब्दुल सलाम के पति ने बताया कि मंगलवार सुबह से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस बारे में और अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आइए bbchindi.com पर। और अब बारी है उस आपकी राय का जिसका हमें भी आपके चिट्ठियों का इंतजार रहता है, तो आइए सुने
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का और आज हैं मेरे साथ
इंदु पांडे।
जी हाँ बिल्कुल, इंदु पांडे हैं। इंदु पांडे के पास ढेर सारी ईमेल्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे हमारे श्रोता अब जो गांव देहात में भी रहते हैं वो भी ईमेल से चिट्ठियां ज्यादा भेजने लगे हैं। आज कहां से शुरू कर रही हैं?
आज शुरुआत करते हैं ओम प्रकाश बैरागी की ईमेल से जो इन्होंने भेजा है चेन्नई से। लिखते हैं कि आपके समाचार में द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक करके ढेर सारी खबरें आ रही हैं और हमें भारतीय समाचार संस्थानों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए हम बीबीसी पढ़ते हैं।
आप बैरागी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, हमारा बीबीसी हिंदी की वेबसाइट में हम समाचार पत्रों की समीक्षा भी करते हैं और जब वो समीक्षा हम जब करते हैं तो उसमें समाचार पत्र का नाम भी लिखा जाता है। शायद आप उसी किसी खबर का जिक्र ये कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। जब इंडियन एक्सप्रेस से कोई खबर लेते हैं तो एक्सप्रेस का नाम आता है, हिंदुस्तान से लेते हैं तो हिंदुस्तान का नाम आता है। इसलिए चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं और आपके साथ बने रहेंगे।
और निखिल रंजन की दुनिया जहान को बहुत लोग पसंद करते हैं जिसमें से एक हैं कुमार दीपक, और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। और
तो एक सिलसिलेवार जैसे नाम आएंगे तो आप उनका जिक्र कीजिएगा। कुमार दीपक का बहुत बहुत धन्यवाद।
और आफ्ताब पूछते हैं कि भाई ये अजीत सारथी कौन है?
अजीत सारथी, अच्छा अब जहां मैं स्टूडियो में बैठा हूँ बीच में एक दीवार है जिसमें बहुत बड़ा कांच लगा है, उस कांच के पार अजीत सारथी इस वक्त बैठे हैं, हंस रहे हैं और वो ये जो कार्यक्रम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दरअसल वही रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अजीत सारथी आपकी तारीफ है, आपके बारे में पूछा जा रहा है, वो हाथ जोड़ रहे हैं, मैं उनकी आवाज़ तो नहीं सुना सकता लेकिन वो कह रहे हैं कि शुक्रिया।
और ये हमारे पास चिट्ठी आई है भिलाई से जो लिखा है श्याम बहादुर सिंह ने, कहते हैं कि मैं आपका बहुत ही पुराना श्रोता हूँ लेकिन आप लोगों का अब अता पता नहीं है, बीबीसी अब बहुत बकवास कॉर्पोरेशन बन चुका है।
अरे बाप रे बाप, क्यों नाराज हैं? क्यों कुछ लिखा है कि क्यों नाराज हैं ये?
कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा बॉलीवुड के इतिहास को अब बताने लग गए हैं।
अच्छा, इनको ये कार्यक्रम पसंद नहीं आया लगता है जो हम
संग
गुनगुनाओगे। लेकिन देखिए ऐसा होता है, बहुत सारे तरह के श्रोता होते हैं, कुछ लोगों को राजनीति पसंद आती है, कुछ लोगों को अंतर्राष्ट्रीय विषय पसंद आते हैं, कुछ लोगों को संगीत भी पसंद आता है। तो भाई जितने महत्वपूर्ण आप हैं उतने महत्वपूर्ण दूसरे लोग भी हैं, हमारे लिए तो सब श्रोता बराबर हैं। तो कभी खट्टा कभी मीठा,
कभी मीठा,
कभी संगीत कभी राजनीति,
जरूर। और ये दूसरी हमारे पास चिट्ठी आई है विष्णु वर्मा की ककोली फैजाबाद उत्तर प्रदेश से, लिखते हैं कि सायंकालीन सभा और प्रातःकालीन सभा में रेहान फजल द्वारा जो विवेचना थी बहुत अच्छी लगी, और इसके साथ साथ ये कहते हैं कि मुरारजी के स्थान पर चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने होते तो शायद कुछ और बात होती।
अपने विचार बता रहे हैं, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, इतिहास में जो कुछ हो गया उस पर न तो हमारा बस है न आपका बस है।
ये ईमेल आया है सीता रमन जी का, कहते हैं कि
कहाँ से आया है,
इन्होंने नाम नहीं लिखा,
ईमेल है लेकिन नाम नहीं लिखा है कहाँ से। अगर आप लोग ईमेल के साथ साथ आप जहाँ रहते हैं शहर गांव उसका नाम भी लिख दें तो हमें आसानी होगी ये बताने में कि श्रोता कहाँ के हैं।
लिखते हैं कि नमस्कार भारत, इनको बहुत खराब लगा, और आगे कहते हैं कि राजेश जोशी ने जो इंटरव्यू लिया था एमएलए का दैट वॉज सो इरिटेटिंग।
यानी हैदराबाद के जो विधायक हैं टी राजा सिंह, उनका इंटरव्यू इनको पसंद नहीं आया
जी।
भाई पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, हमने तो अपने पत्रकारिता का धर्म जो है वो निभाया,
ठीक उल्टे ऐसा ही एक हमारे पास ईमेल आया है जंग बहादुर सिंह का गोल पहाड़ी से। लिखते हैं कि राजेश जोशी जी से हैदराबाद के भाजपा एमएलए श्री टी राजा सिंह का इंटरव्यू सुना, जो न सिर्फ एक्सक्लूसिव था बल्कि मैं उसे एक्सप्लोजिव यानी कि विस्फोटक भी मानता हूँ, बहुत अच्छा था।
देखिए अब मैं इंदु जी क्या कहूँ, हमारे सीतारमन जी कह रहे हैं कि पसंद नहीं आया, जंग बहादुर जी कह रहे हैं कि पसंद आया। बस हम अपना काम करते हैं, वो एक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने काफ़ी इस तरह का बयान दिया जिसको जिस पर चर्चा हुई, तो हमने सोचा कि उनसे बात कर लें।
और एक हमारे पास ये ईमेल आया है बहुत दूर से परेश मोदी का, टोरंटो कनाडा से।
टोरंटो कनाडा से जी, मोदी साहब क्या लिखते हैं?
लिखते हैं हेलो नमस्कार भारत एंड दिन भर।
जी
बहुत खुश हैं ये बताते हुए कि आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जर्नलिज्म में जो भारत में हो रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ राजेश जी, आप खुद इसको पढ़ के आप
अच्छा आपने तो... मुझे दे दिए, बिल्कुल अंग्रेजी में चिट्ठी लिखी है। लिखते हैं कि आप दूसरे भारतीय जो टीवी चैनल्स हैं उनको पत्रकारिता और खबर की सही माने बता रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी आपने परेश मोदी साहब। हम तो बीबीसी के जो तौर तरीके हैं, जो नियम कानून हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं, लेकिन इस बात को जान के मुझे बड़ी खुशी हुई कि टोरंटो में इंदु जी आपकी आवाज़ परेश जी सुनते हैं और हमें चिट्ठी लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास अब समय नहीं है तो चलते चलते पता बता दें।
ज़रूर।
बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर ईमेल लिखना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
तो अगर आपने अब तक चिट्ठी नहीं लिखी है तो अब जरूर लिख दीजिएगा। और आज आपको ध्यान है कि आज 13 अप्रैल है, वो दिन जब आज से ठीक 98 साल पहले 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इस दिन क्या कुछ हुआ था इसके बारे में बहुत सी बातें आप सुनते और पढ़ते आए हैं। एक बहुत ही विस्तार से लिखी हुई रिपोर्ट bbchindi.com पर मौजूद है जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी रेहान फजल ने लिखी है, और वहां आप उस घटना का पूरा ब्यौरा पा सकते हैं। आइए bbchindi.com पर। रेडियो पर कार्यक्रम में अब सुन लेते हैं खेल समाचार। राखी शर्मा स्टूडियो आ गई हैं। जी राखी
जी, आज ईडन गार्डन्स पर मुकाबला अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच। कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग को चुना है और ये टीम कुछ बदलाव के साथ उतर रही है। क्रिस लिन जैसा कि सब जानते हैं इंजर्ड हो गए थे पिछले मैच में, तो उनकी जगह कॉलिंटन ग्रैंडहोम ने जगह ली है। उमेश यादव और पीयूष चावला भी मैच में आज खेलते दिखाई देंगे। कुलदीप यादव और राजपूत आज इस टीम से बाहर बैठेंगे। वहीं किंग्स इलेवन पंजाब की टीम एक बदलाव के साथ उतरेगी। ईशांत शर्मा ने रिप्लेस किया है नटराजन को। किंग्स इलेवन पंजाब ने आईपीएल 10 में अच्छी शुरुआत की। अपने पहले मैच में टीम ने पुणे को 6 विकेट से हराया, फिर बैंगलोर पर 8 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की। नए कप्तान ग्लेन मैक्सवेल की अगुवाई में टीम पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैदान पर उतरी है। पुणे के खिलाफ 164 रन का लक्ष्य मिलने के बाद टॉप के 4 बल्लेबाज 85 रन पर पवेलियन लौटे, लेकिन मैक्सवेल और डेविड मिलर की जोड़ी ने मोर्चा संभाला और टीम को 6 विकेट से जीत दिलाई। वहीं ये टीम बैंगलोर के खिलाफ मुंबई एबी डिविलियर्स माफ कीजिएगा कि धमाकेदार पारी भी पंजाब की टीम को जीत से नहीं रोक पाई। इस मैच में हाशिम अमला और मैक्सवेल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। बैंगलोर के खिलाफ संदीप और मोहित शर्मा डिविलियर्स को रोकने में नाकाम रहे थे। ऐसे में यही वजह है शायद आज ईशांत शर्मा को खिलाया जा रहा है। दूसरी तरफ 2012 और 14 की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स एक हार एक जीत के साथ किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ मैदान में उतर रही है। टीम के लिए हालांकि परेशानी की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि गुजरात के खिलाफ जो मैच के हीरो रहे थे वो क्रिस लिन आज इंजर्ड हैं और अनफिट होकर बाहर बैठ रहे हैं। वहीं खबर बैडमिंटन से भी है। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और मेन सिंगल्स खिलाड़ी बी साई प्रणीत आज सिंगापुर ओपन में खेले गए अपने अपने मुकाबले जीत दर्ज कर तीसरे दौर में दोनों ने जगह बना ली है। और मेन सिंगल्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला एक और खिलाड़ी के श्रीकांत खेल रहे हैं दूसरे दौर का।
बहुत शुक्रिया राखी खेल समाचारों के लिए। और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का वक्त आ रहा है, तो आइए प्रमुख समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर जीत का परचम लहराया है। दिल्ली की राजौरी गार्डन, मध्य प्रदेश की बांधवगढ़, असम की धेमाजी और हिमाचल प्रदेश की भौरांज विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। यूरोपीय मानवाधिकार अदालत ने साल 2004 के बेसलान स्कूल बंधक कांड मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि इस घटना में मारे गए लोगों को बचाने के लिए रूसी सरकार को और कदम उठाने चाहिए थे। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा है कि उनकी सेना ने रासायनिक हथियारों का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं किया है। राष्ट्रपति असद ने यह भी कहा है कि इस मामले में उनकी सरकार किसी भी जाँच के लिए तैयार है, लेकिन ये जाँच पूरी तरह से निष्पक्ष होनी चाहिए। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लिस्कोनी ने अपना फुटबॉल क्लब एसी मिलान चीन के निवेशकों के एक समूह को बेच दिया है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया संदीप सोनी ने और आज स्टूडियो संभाला है राजेश चौहान ने। आपसे कल सुबह नमस्कार भारत में फिर मुलाकात होगी। तब तक खबरें देखनी हैं तो आइए bbchindi.com पर। निखिल रंजन को सभी साथियों संग दीजिए अनुमति। नमस्कार।